नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए संसद के दोनों सदनों में संवाद और कूटनीति को महत्वपूर्ण बताया है। डॉ जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा में कहा कि सरकार ने पिछले महीने की 20 तारीख को स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया था और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उभरते घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। वहीं राज्यसभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस वर्ष जनवरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी और उनसे भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाने तथा उचित सावधानी बरतने को भी कहा था।
इंडिया इज इन फेवर ऑफ पीस।
भारत शांति के पक्ष में है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव कम करने का आग्रह करता है। हम संयम बरतते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पक्ष में है। क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम क्षेत्र के देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे लिए ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक हित सहित राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे पर सरकार को इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अब तक लगभग 67,000 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं। कतर में भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि दोहा में अल्पकालिक यात्रा पर फंसे लगभग 1,000 भारतीय पिछले 3 दिनों में कतर एयरवेज की उड़ानों से रवाना हो चुके हैं। दूतावास ने बताया कि दिल्ली, मुंबई और कोच्ची के लिए कतर एयरवेज की 3 उड़ानें संचालित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री केरल के अर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की भी शुरूआत करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के बीच सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने निवेशकों से संयम बरतने की अपील की है। निफ्टी के 30 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि भारत की घरेलू आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जो ऐसी अनिश्चितताओं के बीच दृढ़ता प्रदान करती है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 35वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। असम में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। ये 3 उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के जोगेन मोहन, तिराश गोवाला तथा यूनाइटेड पीपुल्स लिबरल के प्रमोद बोरो। पश्चिम बंगाल के राज्यसभा के 5 उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिए गए हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रबी लमिछाने और आरएसपी के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह को नेपाल के चुनावों में उनकी जीत और आरएसपी की शानदार सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि संयुक्त प्रयासों से भारत नेपाल संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयां छुएंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।